Simone.
Bitte?
बच्चों में कौन कौन है?
सनी रेजो मी
ओके
मानस
मानस दिया इज देयर
नो मनीष दिया इज नॉट हियर टुडे
ओके
समीर मानस रिजुल एडल्ट्स में कौन कौन है?
स्मिता जी सिमोन जी myself anybody else neeraj ji aap hain
haan ji
and smita
smita ji aapka naam le aa gaya okay aur koi hai
manish bhai jaitinendra main hu but this is the first session I thought I'd try and attend main panu
okay
so I'll stay on mute I'll listen to everybody
not a problem okay to vijil aap mangla chatur se beta shuru karoge
I didn't hear
can you take mangla chatur
नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो ओवजायनं नमो लोय सर्वसावनं तीन भुवन मेसार वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके
Okay, very good. So we have listened to what about eight chand, right? And then I think Anwar ji had explained all the way to 11. So let's try to revise right from the beginning, and we'll see how far we can go. So Samir, can you explain Mangla Charan as you understand and remember?
In the teen log there's
hindi mein bolo beta hindi mein bol sakte hain
teen log mein sabse uttam cheez vitrag vigyanta hai
हाँ बोलो
दिस वीतक विज्ञानता like you can get moksha from it and you do it through the three activities man vachan and kai
you do the three activities man vachan and kai can you elaborate on that
like your bhav is like good and then your actions are good and like what you say is like
okay so are you saying that ki teen yog se we can get pita vidyanta
yes
Are you sure? Okay, Rijul, do you want to give it a try?
Vitrag Vijanta is the one thing that that helps you achieve moksha, and we. And we do it through Man, Vachan, and Kai.
Okay, Manas, you want to give it a try?
Teen lok mein sabse uttam vastu vitragvijnanta hai. Aur vitragvijnanta moksh swaroop aur moksh prapt karane wali hai. Aur hum ab teen योग से मन वचन काय से नमस्कार करते हैं.
तो मन वचन काय से हम किसको नमस्कार करते हैं, कौन बताएगा? समीर. Give it a try. Very good. Vitra Vijanta, right?
Yeah.
Okay, so can you explain what is Vitra? What is Vitra? And then what is Vijanta?
When you have no rag and dvesh.
Uh-huh. Very good.
And Vijanta is like when you have all the knowledge and the right knowledge.
Okay. So, ये वितराग विज्ञानता है वो हमें मोक्ष प्राप्त कराने वाली है और हम ये संसार में कैसी चीज है वितराग विज्ञानता को कैसा बताया पे. एक शब्द इस्तेमाल किया था पहले, किस तरह की वस्तु है ये, बड़ों में कोई बताएगा? सचिन जी.
सबसे उत्तम
वस्तु है. उत्तम शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है. तो ये हमें मोक्ष प्राप्त कराने वाली है, तो इसलिए हम इसे. तो तीन योग यहाँ पे जो लिए हैं, ये तीन योग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे तीन योग जो लिए हैं वो कौन कौन से हैं? सिमोन जी, यू वांट टू ट्राई?
श्योर. तीन लोक इज I don't know in Hindi. One is Madhya Lok, where human beings and Tiryant live. The other one is Ardhvalok, which I think is the where the Devas live, the top part of the Lok. And then there's, what is the bottom Lok called? Urdhvalok.
Bottom is Adholok and top is Urdhvalok.
Oh, thank you. So U is Urdhvalok, right? Under?
Right.
Round. Okay, Urdhvalok.
Urdhva is up and Adho is bottom.
Oh, I reversed it. I apologize.
Yeah.
The top lok is where the devas live, and Madhya lok is where the humans and Tiryants live, and the bottom lok is Ardhvalok is where the hell beings, the Narak and Narkis live, and that's how the lok is divided into three parts.
Okay, so my question actually was more like teen yog jo bole hain, what we said is namahu triyog samhari ke. So what are the three yog that Bhagavad Ramji has talked about?
Oh, I see.
That's okay. So do you want to give that question a try also?
The what the three yogas are, is that what the question was?
Yes.
The three yoga is Man, Vachan and Kaya, right?
That is correct. So what does that mean? Namahu Tri Yoga Samharike. Can you elaborate a little bit on that?
Tri Yoga, Man, Vachan and Kaya is basically the culmination of Man, Vachan and Kaya. Kaya is Charitra, I mean, or what you do. Vachan, I think, is the physical movement. And Man is the perception, right? So is to follow the right guru, right Bhagwan, right guru, and right Shastra with Man, Vachan and Kaya.
So Man is like the perception, Vachan is the words, and Kaya is like the body. So you want to make sure that you are leaving all vikalp, sare vikalp chhod ke, hum apne man ko sthir karke, namaskar.
Man ko sthir karke, could you repeat the second part? Man ko sthir karke?
मन को स्थिर करके हम वीतराग विद्याहंता को नमस्कार करते हैं और सावधानी से मतलब सावधानी से मतलब सारे विकल्प छोड़कर.
अच्छा 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 ओके दैट इज वेरी क्लियर थैंक यू सो मच.
तो ओके वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट सम सिंपल डेफिनेशंस जो अनुभूति ने हमारे पक्ष शुरू में शेयर की थी. तो let's talk about jeev. Jeev kise bolte hain? So Rajo, jeev ki kya definition hai?
Jeev is the soul which is pure and jeev, the only thing for jeev that you have to do is knowledge. Like, that's the attribute.
Okay. So, Hindi mein aap usko kaise bol sakte ho? Knowledge attribute se kya hota hai?
We
kaise pehchante ho jeev kaun sa hai aur kaun jeev hai aur kaun jeev nahi hai? Kaise pehchante ho?
Could you repeat that?
Jeev को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं? नॉलेज एटीट्यूड तो आपने पढ़ लिया, बट हाउ डू
यू नो बिकॉज द जीव इट्स प्योर एंड
डिफाइन प्योर फॉर मी. व्हाट इज प्योर? डिफाइन प्योर.
प्योर इज दैट इट्स blissful and it has like it's everlasting and you're not like
चल बड़ों से पूछते हैं. तो स्मिता जी आप बताएंगे जीव किसे कहते हैं?
Well, jeev is a soul, and basically we know it exists because of karmas, and so therefore there are different humans, so different karmas and animals and so on and so forth. So we know that it's based on karma, and that's why jeev exists.
Jeev exists because jeev. Of karma.
Well, jeev is a soul, but it's based on your karmas and what kind of physical state that it exists in. And so we know that jeev does exist, and it's based on the karma. This is what I think.
No,
jeev jisme jeev jisme gyan aur chetna hai wo usko jeev bolte hain. Aur chetna gyan darshan mein hai.
बिल्कुल सही बोला भानु आपने. नीरज जी थोड़ा उसको और एलाबोरेट करेंगे. कि जीव का लक्षण क्या है उसे हम कैसे पहचानते हैं. आई थिंक अनुभव जी ने इसको काफी डिटेल में लिया था.
हाँ, जीव जो है, जीव जो कि जिसका जो कि जानने वाला है, जो जानता है बेसिक एटीट्यूड, और जो जिसको कि दुख का सुख का जो है वेदन होता है उसको जो है हम जीव बोलते हैं. जैसे सुख,
तो जैसे नीरज जी ने बताया, जीव की पहचान जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, जिसको सुख दुख का वेदन होता है वो जीव कहलाता है. तो चलिए थोड़ा आगे और लेते हैं. तो अपनी बात हुई थी कि मोह और राग, तो मोह और राग में क्या अंतर है, कौन बताएगा? मानस, मोह पहले बताओ, मोह क्या है, फिर राग क्या है, और मोह और राग में क्या फर्क है?
मोह में मिथ्यात्व है और राग अटैचमेंट है.
वेरी गुड. सो मोह किस वजह से होता है और राग किस वजह से होता है? सचिन भाई आप बताएंगे.
हाँ, राग मतलब कोई चीज पसंद होती है, मतलब तो यू नो वो राग कहलाता है. किसी के प्रति भी राग हो सकता है. कोई चीज हमको पसंद है, हमको अच्छी लगती है, तो उसकी तरफ यू नो वो राग जुड़ जाता है. और आई थिंक द मेन डिफरेंस बिटवीन राग एंड मोह इज के मोह में आके ममत्व बुद्धि होती है, और इसके कारण यू नो मोह मतलब कंपैरिजन में थोड़े मोर डेंजरस है. ऐसा अनुभव जी ने भी हमको अच्छी तरह से समझाया था कि अगर किसी भी चीज में ममत्व बुद्धि हो तो वो मोह कहलाता है. जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में समझाना हो तो अगर अपने कोई यू नो फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उनको देखने जाते हैं, हमारा उनके प्रति राग है, उनकी तबीयत पूछने जाते हैं, देखने जाते हैं, और फिर यू नो वी ट्राई टू काइंड ऑफ स्टैंड यू नो इन फ्रंट, बेसिकली सपोर्ट दैट पर्सन. और इसी एग्जांपल में फ्रेंड की जगह में अगर आप कि वाइफ या बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो आपको न्यूज़ मिलती है तो आप एकदम ही आकुल व्याकुल हो जाते हो, क्योंकि वहां आके मतलब आपकी ममत्व बुद्धि लगी हुई है, वहां मोह लगा हुआ है कि यू नो दिस इज यू नो योर वाइफ एंड योर किड. तो उसमें जो कर्तव्य बुद्धि आ जाती है, मतलब ये मेरा है, ये मेरी है, तो उसमें आके आकुलता व्याकुलता बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और इसी के कारण यू नो ये ज्यादा मतलब खतरनाक है. एंड बेसिकली द फाइनल तात्पर्य इज लाइक यू नो मोह और मिथ्यात्व के कारण ही हम लोग चारों गतियों में भटक रहे हैं.
थैंक यू सचिन जी, वेरी नाइसली एक्सप्लेन. तो आपने जैसे बोला मोह सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो राग खतरनाक क्यों नहीं है सिमोन जी? राग इतना खतरनाक क्यों नहीं है जैसे मोह खतरनाक है, जैसे सचिन भाई ने एक्सप्लेन किया? सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? जस्ट टू गिव यू अ हिंट, आई थिंक अनुभव जी हैड एक्सप्लेन दैट कि मोह किसके निमित्त से होता है और राग किसके निमित्त से होता है. एंड if you think about in those lines, probably you will get to the answer.
I think that if I remember correctly, that Anubhavji had explained that Raag Mithyatva se hota hai, aur jab Mamatva aur Mithyatva kam ho jata hai, to Raag Dvesh apne aap kam ho jata hai, perhaps?
If I understood you correctly, you said Raag Mithyatva ki wajah se hota hai, is that what you said?
You know, Raag Dvesh, both, I think, happens. Well, the Dvesh part for sure, but I think also Raag is through wrong perception. So if the Mamatva, Mithyatva, that is more dangerous because that takes you down to doing these other things.
Okay. Manas, do you remember Moh or Raag mein Raag? Moh, jaise Sachin Uncle ne bataya, Moh is very dangerous. So Moh कहां तक रहता है, मोह का मिथ्यात्व कहां तक रहता है और राग कहां रहता है और राग इतना डेंजरस क्यों नहीं है पर मोह डेंजरस क्यों है?
मुझे याद नहीं है।
समीर, you want to give it a try?
ओ क्योंकि मोह में मिथ्यात्व है।
ओके, तो वो तो सचिन अंकल ने बताया कि मोह से मिथ्यात्व होता है। तो मोह के साथ राग द्वेष होता है कि नहीं होता?
हाँ, पर राग के साथ मोह नहीं होता।
ओके, तो वो स्थिति कब आती है? When does that situation arrive?
मुझे नहीं पता।
समीर,
like more is like more dangerous because like when you rag and dwesh, it's because of it.
Uh-huh. Very good.
Like that is present any time.
What was the last thing you said? It is present what?
It's present most of the time, so that's why.
What is present most of the time? Moh or Raag?
Moh.
Okay. So when does it go away?
When you get when you get moksha?
No. Obviously.
Oh, karam, karam se kuch.
Yes, exactly.
When mithyatva kam ho jata hai, to karam kam ho jate hain. I remember something to do.
दो टाइप के कर्म थे। नीरज जी, आप बताएंगे?
तो जब मोह की बात करते हैं, तो हम जो है दर्शन मोहनी की दर्शन मोहनी है और चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी यानी मिथ्यात्व, हमारी उल्टी मान्यता, और चारित्र मोहनी यानी हमारे राग द्वेष का शाय भाव। तो जैसा सचिन जी ने बताया कि जो मिथ्यात्व है वो ज्यादा खतरनाक है राग की अपेक्षा, वो इसलिए इस अपेक्षा से बताया, इस एंगल से बताया कि अगर मुझे मिथ्यात्व है, अगर मुझे मिथ्यात्व रह गया तो मेरा राग जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा, मुझे कभी भी जो है मेरी मान्यता सीधी नहीं होगी तो मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाऊंगा, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाऊंगा तो मुझे जो है जो सच्चे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और राग जो है, राग तो काफी लंबे समय तक रहता है, जब मिथ्यात्व सम्यक दर्शन पूर्वक मिथ्यात्व रहता है खाली अनंतानुबंधी का जो है जो हमारी कषायज हैं वो जाती हैं, मगर राग हमारा रहता है। उस समय में जब सम्यक दर्शन होता है उस समय जो है हमारा दर्शन मोह है उसका जो है नाश होता है। उसके बाद हमारा बाकी ये तीन कषाय रहती हैं और हमारा राग जो है राग के अंदर जो तीव्रता है वो हमारा राग धीरे धीरे जो है आगे कम होता है और बारहवें गुण स्थान पूर्वक जो है हमारा हमें पूर्ण वीतरागता प्राप्त होती है।
थैंक यू नीरज जी, बहुत बढ़िया बताया। तो इफ यू रिमेम्बर, एवरीबॉडी इज रिमेम्बर, गुणस्थान अनुभव जी ने थोड़ा सा गुणस्थान के बारे में बताया था। तो हमारा मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान में जाता है? रिजु, हम सम्यक्ति कब होते हैं, कौन सा गुणस्थान होता है, सम्यक्ति होते हैं तो कौन सा गुणस्थान लगता है? यू रिमेम्बर दैट?
यस, द फोर्थ गुणस्थान।
फोर्थ गुणस्थान, तो हमारा मिथ्यात्व या दर्शन मोह का उदय जब वहां पे उसका निमित्त चौथे गुणस्थान में खत्म हो जाता है, एंड मिथ्यात्व और मोह से हमें क्या होता है, वी हैव अपोजिट नॉलेज या अज्ञानता, राइट, विपरीत श्रद्धा रहती है हमें। तब तक हमारा राग द्वेष बहुत, जैसे सचिन भाई ने एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसे मैं अपना मानता हूँ, या मेरे को कुछ हो जाए तो मैं उसे अपना मानता हूँ, ये मेरा अपना विपरीत ज्ञान है, विपरीत श्रद्धा है। और इस मोह ममत्व की वजह से जो मेरा मिथ्यात्व है उसकी वजह से मेरा राग द्वेष बहुत तीव्र रहता है। बट आफ्टर फोर्थ गुणस्थान जब सम्यक तो हो जाता है तो राग द्वेष तो फिर भी रहता है, पर वो जो राग रहता है उस टाइम पे वो इतना डेंजरस नहीं होता, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है दैट इज नॉट अपोजिट, नाउ वी नो कि मैं क्या हूं और पर क्या है। तो स्थिरता का कमजोरी से, मतलब यू आर नॉट स्टिल कंप्लीटली स्टेबल इन योर सोल, सो उसकी वजह से राग रहता है, बट वहां पे मिथ्यात्व मोह का मिथ्यात्व नहीं रहता। तो अपने जो गाथा में लिया था, ताई सुनो भवि मन सिरान जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत पादी। तो यहाँ पे मोह रूपी मिथ्यात्व की बात ली है। तो रिजुल, यू वांट टू एक्सप्लेन दिस?
Could you repeat the question?
The gatha. Kahi suno bhavi man thir aan, jo chaho apno kalyan, moh mahamad piyo anadi, bhul aapko bharmat vaadi.
We are capable of attaining moksha if we want to attain moksha, then we should listen to like preachings, and then for infinite time, we have been drinking the wine of delusion. So we never realized our true nature.
Mm-hmm. I agree.
That's it.
Okay. So, what is Muhammad?
Muhammad is the one of delusion.
And delusion against what?
Against who we truly are.
Very good. Okay, I think we have one in between gatha, which I think we didn't talk about. Manas, you want to take the second gatha? Jetribhuvan mein jeeva anant.
उसका मतलब लेने के बोलने
बोल के फिर उसका मतलब
जय त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हरी सुख कार कहे सीख गुरु करुणा धार तीनों लोक में अनंत जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं और इसलिए गुरु दया करके दुख को नाश करने वाली शिक्षा देते हैं और दुख को नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं.
Okay. Smitaji, do you want to elaborate on this, what Manas just explained?
As he said, the infinite beings living in the three worlds, they basically desire happiness, and no one wants suffering. So basically, we need to have the knowledge, and we will attain that knowledge if you're asking for it, and you'll get the lessons to destroy this suffering and to have only happiness.
So, jeev dukhi kyun hai? So, yahan pe keh rahe hain ki sukh chahe dukh te bhayavant. To ki sare jeev sukh chahte hain aur dukh se darte hain. तो जीव दुखी क्यों है?
Because उनके पास right knowledge नहीं है.
Right knowledge नहीं है इसलिए वो दुखी हैं. थोड़ा सा और उसको explain कीजिए. मतलब right knowledge नहीं है तो दुखी हैं पर कैसे? You're right. Just elaborate a little bit.
Because the jeev needs to be liberated, and it needs to learn. It wants spiritual. It desires spiritual welfare and happiness, but it requires instructions or knowledge. And that's a lesson that it requires and doesn't have, and that therefore it fears suffering. I think that's what it is. And
okay.
That's why it wanders around.
Sameer, do you want to give it a try? Ki jeev dukhi kyun hai?
Because हम गति में घूम रहे हैं और हम like we haven't experienced real happiness.
I didn't get the last part. जो आपने इंग्लिश में बोला दोबारा बोलो.
We haven't experienced real happiness and we don't know what it is.
Yeah, so we might live in the delusion that whatever I feel, when I get a new video game, I feel happy. So that's how that makes me dukhi. I don't know the real happiness, so whatever I feel happiness with, I'm happy with that.
Happiness? and it goes away.
Then and it like, goes away. Yeah.
And we're trying to find like everlasting happiness, and that can only be achieved if we know our soul.
Very good. So at least we have found that whatever we think is the happiness doesn't last forever, right? So now we are trying to find out that what kind of happiness I can get which will last forever, right? So what is the root cause of not finding that happiness today? I think Smitaji gave an answer for that. So we know at least that today what we think is happiness is not real happiness because it just goes away. Right? Sameer?
Yes.
So what do I have to really do? Something must be fundamentally wrong, right? Because the thing I think is a happiness is not a happiness. So what is fundamentally wrong?
So we think that we are, that our body and our soul is separate. I mean, that we think that they're the same, but then they're really separate.
Mm-hmm. So how do you sum that up in one or two words?
Mithyatva.
Right, mithyatva, which is wrong belief and wrong knowledge, right?
Yes.
So when you have a wrong belief, then we believe in something which is feels like happiness but is not the happiness. So because of that, Jeev is really dukhi, because of that kind of wrong knowledge, because he goes after all the wrong beliefs and wrong things. He thinks he can do things, he can, you know, fix things. He believes the body is mine. I can take care of my body. So all that wrong belief and wrong knowledge leads to unhappiness because it's not going to happen. I think it can. I can fix my body. I can take care of my body. I can earn money. But it doesn't happen, right? Very good. Okay, so let's go to Chand 4. Riju?
Ek saath mein 8,000 baar janm
hua. No. Taat Brahman ki hai woh katha, right?
Wo teesra hai.
Yeah, I think I'm counting the one with the...
You said four, so he went to four.
Third
one. Subramana ki hai bahu katha, pe kachukau kahi muni jata, kala nantane godaman jat, mito eka indiya tanadar. The story of our life is very long, but I, Pandit Dorotan Ji, will tell the story in a shorter version. And Jeev has passed for an infinite time in Nagod, which is the lowest form of life.
Okay. So you said that... Hello?
Welcome to Verizon Wireless. The wireless customer you called is not available at this time. Please try your call again later. Announcement 1, switch 2, 8-1.
Is everybody there?
Yes.
Yes.
Okay. So I don't know what was that. All right. So, Rigil, you said that I will say that in short. So he's saying that in short. But is he saying it from his own thoughts, or he's saying it something similar to somebody else who said that?
He's saying it to the thoughts of Bhagwan, from the thoughts of Bhagwan.
Okay. He's saying it like Bhagwan, or he's saying like also somebody else?
From Muni.
Muni and Acharyas, right?
Yes.
So he's saying something like what our Acharya and Munis have said, but in short. Okay, so it says, Skala Ananta Nigodh Majar. So he spent a lot of time in Nigodh. So who can tell? Sameer, can you tell the two different types of, how many types of Nigodh we have?
Two.
What are those two?
Nitya Nigodh and Itar Nigodh.
Very good. Manas, what is Itar Nigodh and what is Nitya Nigodh? Manas?
Nitya Nigodh is like where the Nigodhi first start, and then after, when they go back to Nigodh, it's an Ether Nigodh.
Okay. Can you go back to Nitya Nigodh?
No.
So then who goes to Nitya Nigodh?
That's where you start.
Is there a starting point of life?
No.
So what do you mean by there where that starts?
Like they Jeev stay there until they get out.
Okay. So can you say it like Anadi say till they get out of Nigodh, that is known as Nitya Nigodh. Okay. Do you agree? Okay. So what is Itar Nigodh? Simunji, can you explain what is Itar Nigodh?
Itar Nigodh is when we return, so it's not the first time we are in Nigodh state. We come back to Nigodh state for a limited time.
Mm-hmm. Okay. What makes us achieve to go back to Nigodh? We had heard that in Pravachan as well as Anubhavji had explained. There was a very specific reason why Ajeev goes back to Nigodh. Anybody from adults? Sachinji?
Thank you.
Sachin ji, you are there? Okay, Neeraj ji?
Hi, Manish ji. Can you repeat the question? Kya question kya tha?
Question is, why does a jeev go back to Nigod?
Why does a jeev go back to Nigod?
Yeah, we're talking about Ikar Nigod and Nitya Nigod. And then we said Ikar Nigod definition is where once a jeev comes out of Nitya Nigod, goes into any other gati, and then when he comes back to Nigod, he goes back into Ikar Nigod. So there was in Rosesh's Pravachan as well as Anuji explained, why does a jeev go back to Nigod?
हाँ प्रवचन के उससे मुझे ख्याल नहीं पड़ता है कि क्या आया था उसके अंदर
देवदास्तर गुरु की विराधना when you don't respect सच्चा देव शास्त्र और गुरु is that
that's very close yeah तत्व की विराधना
अपने ज्ञान की महिमा नहीं करता उसीलिए क्योंकि इसका ज्ञान बहुत हीना हो जाता है
right exactly तत्व की विराधना और उसकी वजह से अपने अपनी पहचान ना करने की वजह से जीव निवोदने वापस जाता है तो स्पेसिफिकली गुरुदेव श्री ने उसको लिया था कि निवोद में जीव अब तत्व की विराधना करने से जाता है ओके निगोद और नरक का कंपैरिजन करते हुए गुरुदेव श्री ने क्या कहा था प्रवचन में
Could you please repeat the question?
The question was नरक गति और निगोदिया जीव के कंपैरिजन में what was the comparison he made? Which one, which kind of life? He made a comparison between the two lives. A jeev which has a nigod life and one which has a narak life. Can someone do you recall or anybody recalls what was the comparison? बच्चों में कोई भी मानस सनील रिजु anybody?
Could you repeat the question?
Yeah, the question is that what is, when you compare Nigod life versus Narak life, how did Gurudev Shri compare Nigod life versus Narak life? Anybody from adults, Smita ji?
Well, I'm not sure, but I think Nigod, you know, you keep dying many times. You know, there was 18 times during one breath, and, you know, you're born as earth-bodied, fire-bodied, or air organism. But so I think that's worse because you keep coming back if you're comparing the two, and then Narak. But I'm not sure that's what you're asking.
Yeah, I think that's better. It's the lowest form of life.
Exactly.
Yeah. And it's lowest form of life because of what reason? The one thing is that, yeah, you said that he keeps taking birth and dying over and over and over 18 times in one death. But what is the real reason that it has? It is the lowest form of life.
Because it hasn't, once again, gained the knowledge that it requires to get itself off that state.
Right. So the capability of that jeev in that state to acquire knowledge is very, 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 when you say acquire knowledge, is to know himself, is very, very low. The shabd used to be that एक अक्षर एक अल्फाबेट का अनंतवे भाग इतनी सी इतनी ही नॉलेज रहती है बस. सो इट्स वेरी वेरी स्मॉल एंड जब नॉलेज इतनी कम होती है तो मिथ्यात्व बहुत तीव्र होता है एंड दैट्स व्हाई ही इज द फील द मोस्ट पेन और वो जीव सबसे ज्यादा दुखी होता है.
और नरक में तो क्योंकि पंचेंद्रिय होता है तो इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन भी पा सकता है ना.
एग्जैक्टली क्योंकि नारकी जीव पंचेंद्रिय भी होता है तो वहाँ पे उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने तक की क्षमता होती है कैपेबिलिटी होती है. तो जीव कितने प्रकार के होते हैं और समीर जीव छह प्रकार के होते हैं. अच्छा ऊपर से स्टार्ट करेंगे
दो तो,
हाँ बोलो
संसारी जीव और मुक्त जीव.
वेरी गुड. ओके तो मुक्त कौन मुक्त जीव में कौन आते हैं?
सिद्ध और अरिहंत.
वेरी गुड. और अरिहंत को और सिद्ध भगवान को किस टाइप के परमात्मा बोलते हैं? अरिहंत अरिहंत को किस टाइप का परमात्मा बोलते हैं और सिद्ध को किस टाइप का बोलते हैं? Do you remember?
Arihant is Sansari.
Arihant is Sansari, but even in book, if you kind of say book in Paramatma definition, you can call them as Sakal Paramatma and Nikal Paramatma. One with Sharir and one without Sharir. Remember we just visited Paramatma definition?
Yes.
Okay. So let's get to Sansari. So Sansari mein kaun se do type hai fir? Viju? Sansari mein kaun se do type ke jeev hote hain?
Chatkayak aur tras.
Very good. Chatkayak aur kya bolte hain?
स्थावर.
स्थावर. Exactly. तो षटकायक स्थावर जीव के कितने भेद हैं मानस?
Would you repeat the question?
षटकायक या स्थावर जीव के कितने भेद हैं? How many different types?
स्थावर जीव पांच है.
नाम बताइए.
जल कायक पृथ्वी कायक अग्नि कायक वायु कायक और वनस्पति कायक.
ओके और त्रस जीव के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं सिमोन जी? सिमोन जी बताइए. स्मिता जी
sorry, I didn't understand your question.
Types of thrust jeev. What type of jeeves come in thrust? Sorry.
I'm not sure.
Okay, Rijo?
I
What was the question again?
So we talked about two types of samsari jeev, right? Shakayak or sthavar jeev and trust jeev, right? So what are the different types of trust jeev?
There's 2 cents, 3 cents, 4 cents, 5 cents, and that's it.
Okay, so ek indriya, do indriya, teen indriya, char indriya, aur uske baad panch indriya ke kitne types hote hain?
Sangi panch indriya aur asangi panch indriya.
Very good. Sangi panch indriya ka kya matlab hota hai aur asangi panch indriya ka kya matlab hota hai?
Asangi panch indriya ke paas panch indriya jeev hai jiske paas man nahi hai par Sangi Panch Indriya Jeev ke paas man hai.
Okay, very good. Aur Sangi Panch Indriya Jeev ke paas man hai, wo man se kya kar sakta hai? Man ke nimitt se wo kya karta hai?
जो उसके लिए अच्छा हो रहा है वो सोचता है.
Very good. So he can think. अच्छा बुरा उसको सोचने का possible होता है मन के निमित्त से, right? तो संगीत पंचेंद्रीय जीव कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं? चार गतियों के नाम मालूम है ना?
हाँ जी.
संगी पंचेंद्री जीव कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं?
नरक गति, मनुष्य गति, देव गति और थोड़े से जीव तेरी अंश गति में.
वेरी गुड, एक्सलेंट. तो चलिए अपना टाइम हो गया है.
मनीष भाई, हाँ मनीष भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि वो असंगनी पंचेंद्रिय जीव के एग्जांपल्स दिए थे अनुभव जी ने कोई?
असंगी पंचेंद्रिय के बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे सांप है, सांप की कुछ कैटेगरीज हैं जो संगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं. और जो आपके
वो लाइट लाइट के जो जीव होते हैं ना, वो असंगी पंचेंद्रिय में आते
हैं. हाँ,
उसमें
उसमें उसमें कुछ चार इंद्रिय भी होते हैं और कुछ असंगी पांच इंद्रिय पंचेंद्रिय भी होते हैं.
ओके गुड. हाँ, क्योंकि आई डिडंट नो एनी एग्जांपल्स.
हाँ, लाइट ना जीव है ना.
हाँ,
जे आवीने पिनो विच गोस एंड स्टेस नियर द लाइट.
जो
फोटो दिखाई है उसमें जो जैसे सांप है उसको असंगी पंचेंद्रीय वाला सांप बताया है. तो सांप में संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं. तो असंगी जो होता है उसको अपना भला बुरा समझ में नहीं आता, वो वहीं बैठा रहता है. पता नहीं मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए गलत क्या है. तो उसको सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती ऐसे जीवों को. ओके, तो आज अपन अपना रिविजन यही करें, खत्म करेंगे. एंड मानस, यू वॉन्ट टू टेक जिनवानुस्मृति.
जावानी के ज्ञान से सुजलो कालोक सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक.
नाइन टेस्ट मुकर मंत्र. Jai Jinendra, everyone. Thank you.
Good session.